हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18, टेक्स्ट नंबर 63। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् कुह्यतरम् मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातम् कुह्यात् कुह्यतरम् मया विमृशे तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् कुह्यतरम् मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् कुह्यतरम् मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। शब्दों का अर्थ देखिए। इति मन इस प्रकार, ते तुमको ज्ञान ज्ञान आख्यातम वर्णन किया गया। भगवान कह रहे इस तरह मैंने आपको पूरा ज्ञान बता दिया, यानी पिछले श्लोक में जिस तरह बताया ना उस तरह भगवान कह रहे अभी मैंने पूरा कर पूरा जो भी ज्ञान था ना, ज्ञानम आख्यातम, जो ज्ञान था कौन सा ज्ञान मैंने बताया है। अभी भगवान कहते हैं गुह्यात् कुह्यतरम् मया। गुह्यात् मना बहुत ज्यादा सीक्रेट है जो अधिक, और गुह्यतरम् मना उससे भी ज्यादा सीक्रेट। जो भी मैंने तुमको बताई ना बात, वो मैं रोड पे खड़े होकर सबको नहीं बताता हूँ। हर कोई योग्य नहीं होता है ये सब सुनने के लिए। मैंने तुम्हें जो बताया, किसी किसी को हम कोई खास बात होता थे ना, मुझे खाली तुम्हें बता, अभी तक किसी से शेयर नहीं किया। तो भगवान भी कह रहे हैं गुहिया मना गुहिया से, गुहिया तरह मना और भी अधिक सीक्रेट मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। आगे भगवान कहते हैं विमृश्य मनन करो, मना विचार करो, उसको सोचो समझो। ए तदा इस अशेषेण पूर्णतया, इसको पहले पूरी तरह से तुम समझ लो, उसके बाद भी भगवान ने ये नहीं कहा उसको फॉलो करो। भगवान ने कहा यत इच्छसी, यत मना जैसे, इच्छसी यानी चाहते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा है, तथा गुरु वैसा ही करो। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और फिर तब तुम जो चाहो सो करो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयम् ददाति स्वपरान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चनं वारणे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानो सुतदेवि प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता अष्टादश अध्याय श्लोक संख्या 63। आज भगवान श्री कृष्ण हमें हमारी स्वतंत्रता के विषय में बता रहे हैं कि अब तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी सुनाया है मैं कोई बल का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं बलात् तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम इसी को फॉलो करो। मैंने तुम्हें ये जीवन दिया है और उसके साथ साथ कंप्लीट स्वतंत्रता दी है कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी विवश नहीं करूंगा कि तुम मेरी शरण में आओ, कि तुम ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करो या तुम ब्रह्म। भगवान ने कहा इतिते ज्ञानम आख्यातम। इतिते माना मैंने तुमको सब बताया, जो ज्ञान है ना कि ब्रह्मभूत अवस्था क्या होती है, उसके बाद हृदय में बैठे हुए परमात्मा के विषय में बताया, उसके बाद मैंने तुम्हें सब जो सीक्रेट्स है ना वो सब बता दिए। अब कोई फोर्स नहीं है, विमृश्य तदशेष। इसको पूरी तरह से विचार करो, हृदय में मनन करो कि मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। तुम्हें बुद्धि दी है प्लस तुम्हें स्वतंत्रता दी है और प्रॉमिस भी किया है कि यो यो याम याम तरुम भक्ते हैं श्रद्धया चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ, तुम जिसकी भी भक्ति करना चाहोगे ना मैं साथ दूंगा तुम्हारे। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के उसी देवता के पास लेकर जाऊंगा जिसकी तुम पूजा करना चाहोगे। लेकिन ज्ञान तो दे दिया ना भगवान ने कि यान्ति देवो यथा देवे पितृन यान्ति पितृ यथा भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि मम। फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया है देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं के पास जाओगे, पितरों की पूजा करोगे तो पितरों के पास जाओगे, और यदि भूतों की पूजा करोगे भूतों के पास जाओगे, मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे, और मेरे पास आकर माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान। जो महात्मा हे महाभाव, जो मेरी शरण में आ जाते हैं उन्हें वापस से दुखमय संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता। पूरा ज्ञान देने के बाद भी भगवान ने नहीं कहा कि ऐसा ही करो। कितनी करुणा है भगवान की, कितनी स्वतंत्रता दी है भगवान ने कि जैसा तुझे अच्छा लगता है। लेकिन कभी किसी अवस्था में भी भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। ऐसा नहीं कहा भगवान ने कि यदि तुम किसी और की शरण में चले जाओगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए बाध्य हूँ, बाकी तुम पर कोई बंधन नहीं है, तुम जिधर जाना चाहो जाओ। क्योंकि हम भले ही भूल जाए कि हम भगवान के अंश हैं, क्योंकि हम भले उसको भूल जाएं कि हम हमारा कर्तव्य केवल उसकी सेवा करना है। अंश का कर्तव्य केवल अपने परमात्मा की सेवा करना, इसके अतिरिक्त उसका कोई अन्य कर्तव्य हो ही नहीं सकता। लेकिन भगवान कहते हैं तुम भले ये भूल जाओ कि तुम मेरे अंश हो, तुम भले ये भूल जाओ कि तुम मेरे सेवक हो, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि मैं कभी भूलता ही नहीं हूँ। सनातन, तुम अपने कर्तृत्व की वजह से यदि कुत्ते के अंदर चले जाओगे, अपने कर्तृत्व की वजह से यदि मच्छर के अंदर चले जाओगे, यदि सुअर भी बन जाओगे ना, तो भी मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ। मैं तुम्हें हृदय के अंदर बैठा हुआ निहारता रहूंगा कि कब तुम मेरी ओर देखते हो, लेकिन कभी फोर्स नहीं करूंगा। तुम जितना मेरी ओर आकर्षित होगे, जितना मुझसे प्रेम करोगे, मैं उतना ही तुम्हें ज्ञान प्रदान करता रहूंगा। तेषां सतत युक्तानां भरताम प्रीति पूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जितने कदम तुम मेरी ओर आओगे, आते जाओगे, उतना ही तुम्हें हृदय से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। ये हृदय की बातें हैं, मैं हृदय में बैठकर तुम्हें बताता हूँ और क्या करता हूँ। तेषामि वानुकम पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयान्यात्म भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। इतनी कृपा करता हूँ, इतनी अनुकंपा तुम्हारे ऊपर करता हूँ कि हृदय के अंदर अज्ञान का जितना अंधेरा है उस समस्त अंधेरे को ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से प्रज्वलित करके उस अज्ञान के अंधकार का सर्वनाश कर देता हूँ। तुम पर कृपा करने के लिए मैं हर क्षण तैयार रहता हूँ। बस तुम खाली एक बार अपनी झोली मेरे पर पास पखेरो के मेरे ऊपर कृपा करो। तुम खाली एक बार कृपा की याचना करते हुए मेरी ओर देखो तो सही। यही तो किया था अर्जुन ने। चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 7 भगवान से कहा यत् श्रेयः स्यान् स्थितं पुरोहितन्मे शिष्यस्ते हम स्यादिमां त्वां प्रपन्नम्। बस इतना ही कहना था और भगवान ने खोल दिए समस्त ज्ञान के द्वार अर्जुन के सामने। अर्जुन ने कहा कृष्ण मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप मुझे यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहितन्मे जो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है वो मुझसे कहो। हालांकि अर्जुन ने तो क्या कहा था मुझे बताओ कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, लेकिन भगवान ने संपूर्ण ज्ञान कि तुम्हारा कल्याण किसमें है वो सारा का सारा ज्ञान उंडेल के रख दिया क्योंकि भगवान की शरण में आया था। अब जो भक्त भगवान की शरण में आता है ना उसे ये खबर नहीं होती है कि मैं क्या मांगूंगा जाकर, उससे भले ये पता नहीं होता है कि मेरा कल्याण किसमें है, लेकिन भगवान को तो पता होता है ना। ध्रुव को ये पता नहीं था कि मेरा कल्याण राजपाट प्राप्त करने में है या भगवान को प्राप्त करने में है। वो भगवान से राज प्राप्त करने के लिए गया था लेकिन भगवान ने उसे खुद को सौंप दिया, तो उससे तो पता है ना हमारा कल्याण क्या है। तो बस हम किसी भी भाव से ये न के न प्रकारे यदि हम कृष्ण की शरण में जाते हैं तो कल्याण निश्चित है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं यथ इच्छसि तथा करो, मेरे बच्चे कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम अच्छा सोचो। मैं तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया, पूरी भगवद्गीता में संपूर्ण ज्ञान दे दिया और कहा इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। ये सिर्फ सीक्रेट नहीं है, गुह्यतरम सीक्रेट से भी सीक्रेट मैंने तुम्हें बताया है, लेकिन विमृशय तदशेषेण, इसको खोर से सुनो, इसको अच्छे तरीके से विचार करो, अच्छे तरीके से इसके ऊपर मनन करो, फिर यत इच्छसि तथा करो, जैसे तुम्हारा मन करता है, जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसा करो, एज विश सो यू डू। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्म भूत ज्ञान बता दिया, जो इस ब्रह्म भूत अवस्था में है वह प्रसन्न रहता है, ना तो वह शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है, ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। श्री रूपा जी बता रहे, देखो भगवान ने बोला ना गुह्या गुह्यतरम, कि पहले मैंने तुमको गुह्या बताया उसके बाद गुह्यतर बताया, यानी कि पहले सीक्रेट उसके बाद जो मोर सीक्रेट है ना वो मैंने तुमको बताया है। तो गुह्य ज्ञान का सबसे पहले क्या बताया भगवान ने, 54 में अगर हम देखें तो भगवान ने कहा, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। इस प्रकार जो दिव्य पद को प्राप्त होता है उसे ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं, उसमें उसको शोक नहीं होता है, कोई इच्छा नहीं रहती है, समस्त भूत प्राणियों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है और ऐसे वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। पहले कौन सी स्टेज बताई, ब्रह्मभूत। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुह्यतरम, वहां से लेकर ब्रह्मभूत को स्थापित किया भगवान ने श्लोक नंबर 60 तक, और 61 में भगवान ने गुह्यतरम ज्ञान बताया। गुह्यतरम क्या है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति भ्रामय सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। कि अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है, इसलिए क्या करो, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भावत तत्र सादात् परां शान्तिम् स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भरत, सब प्रकार से उसी की शरण लो, यानी कि पहले ब्रह्म भूत जो ब्रह्म अवस्था है वो भगवान ने पहले बताई, उसके बाद कौन सी अवस्था बता रहे, परमात्मा अवस्था बता रहे, कि जो ईश्वर आपके हृदय में स्थापित है उसको, उसकी शरण लो जाकर, जो हृदय में भगवान आपके विराजमान है उसकी शरण लो, तत्प्रसादात् परम शांति, उसकी कृपा से तुम्हें परम शांति, स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, शाश्वत धाम प्राप्त हो जाएगा, जिसको भगवान ने क्या बताया, श्रील प्रभुपाद ने कहा, अगर फर्स्ट पैरा की आप पैरा की लास्ट लाइन देखोगे ना, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है वहां तक, प्राप्त से शाश्वतम, जो शाश्वत धाम है वैकुंठ धाम है उसको प्राप्त करोगे कब, जब आप परमात्मा की शरण लोगे। तो ये भगवान ने बता दिया कि मैंने आपको जो गुह्य से और गुह्य से गुह्यतर की तरफ लेकर आया हूँ, पहले सीक्रेट बताया उसके बाद टॉप मोर सीक्रेट बताया। अगर हम श्रील प्रभुपाद के शब्दों को थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ से देखिए भगवान कहते, श्रील प्रभुपाद जी कहते ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है, कैसा, कि वो जो ब्रह्म भूत अवस्था बताई ना भगवान ने, वो गुह्य ज्ञान है, उससे क्या होता है, ना शोक करता है ना इच्छा करता है। उसके बाद देखिए कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं 61 में, कैसे बोला, ईश्वर सर्वभूतानां, परमात्मा का भी ज्ञान प्रकट किया, यह ब्रह्म ज्ञान ही है लेकिन उससे श्रेष्ठ है। अब ब्रह्म ज्ञान भगवान ने क्या बताया, कि वो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोषयति न शोषयति ना कांक्षति, उसके अंदर ना शोक होता है ना, लेकिन उसके बाद भगवान ने क्या कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, वो तो ईश्वर है आपके हृदय में बैठा हुआ है, तमेव शरणं गच्छ उसी की शरण लो। तो पहले ब्रह्म ज्ञान बताया, ठीक है, उसके बाद परमात्मा ज्ञान बताया, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि परमात्मा ज्ञान जो है वो भी ऐसा ही है, ब्रह्म ज्ञान भी ऐसा ही है, लेकिन उससे श्रेष्ठ क्या है? परमात्मा ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान में क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और अभी मैं भगवान से अलग हूँ, बाद में मैं भगवान से तदाकार हो जाऊंगा। परमात्मा ज्ञान में क्या होता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा को सरेंडर करता हूँ, कोई रूप नहीं है। तो भगवान यहाँ पर दो चीजों को बताया, गुह्यात गुह्यतरम, के सीक्रेट और मोर सीक्रेट, ये दो चीजों को बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा जैसी इच्छा है वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत्किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। द गॉड डज नॉट इंटरफेयर विद लिटिल इंडिपेंडेंस ऑफ द लिविंग एंटिटी। जैसा करना है, एज यू लाइक यू मे एक्ट, यथेच्छसि तथा कुरु। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतला दिया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार से अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश ये है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए, यानी कि अब तक जो तक जो कुछ भगवान ने बताया उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? श्लोक नंबर 62। ये जो 62 श्लोक है ना, वो सबसे श्रेष्ठ। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अब तक, क्योंकि भगवान जिसकी बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया अब तक गुह्या गुह्यतरम, सीक्रेट और मोर सीक्रेट दो चीजें बताई हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या बताया है कि हृदय में तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिम् स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वत। उस परमात्मा की शरण लो जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। अभी तक वहां तक भगवान पहुंचे हैं, और यही सर्वश्रेष्ठ उपदेश है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इतना सारा ज्ञान है तो परमात्मा जो निर्देशन कर रहे हैं हृदय से चैत्य गुरु के रूप में, तो हमें उसके आदेश को समझने के लिए और उसके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, क्योंकि जब परमात्मा का बोध हो जाता है और हमें संपूर्ण सृष्टि में केवल वही परमात्मा का बोध होता है कि हर कोई के दिल में भगवान का अंश है, तो फिर तो हम कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते ना। क्यों? हृदय में एक भावना सी आ जाती है, यू ना तोड़ा दिल किसी का, हर दिल में कृष्ण रहता। तो कृष्ण परमात्मा के सूरत में जो जब हर किसी के दिल में रहता है, तो फिर निरंतर कृष्ण भावना में स्थित कंटिन्यूअस हर किसी को किसी जीव को, किसी पेड़ को, हर किसी खूबसूरत चीज को देखते हुए कृष्ण को याद करते, जो परमात्मा में स्थित होता है ना, वो किसी भी जीव को देखकर, किसी भी चीज को देखकर, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जिस भी चीज को देखता है और सुनता है कि ये परमात्मा की कृपा है, ये जो हृदय के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है ना, देखो कितना सुंदर फूल है, वो परमात्मा की कृपा है, ये कितना कैसा मनुष्य हर किस, मतलब अगर कोई बुरा भी करता है ना, तो भी उसे लगता है कि इसके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है, वो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, मेरे साथ जस्ट किडिंग, ये मेरे साथ है ना मस्ती कर रहा है, ये बस क्योंकि परमात्मा है उसके अंदर भी और मेरे अंदर भी, तो उसको कोई भी चीज बुरी ना शोक ना शोषति ना कांक्षति, कोई इच्छा भी नहीं होती है उसको, और ना ही किसी चीज का दुख होता है। ये परमात्मा जब हृदय में आ जाता है, तो फिर यहाँ विष्णु प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावना में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। क्या सिद्धि है? निरंतर कृष्ण भावना में स्थित होना ही, यानी कंटिन्यूअस भगवान के विषय में सोचना, भगवान को अपने जीवन के सेंटर में रखना, यही सिद्धि है, सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष युद्ध में युद्ध करने का आदेश दे रहे थे, साफ साफ भगवान ने कहा युद्ध करो, आपको युद्ध करना चाहिए। भगवान शरणागत होना, भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है, यानी कि अगर हम भगवत शरणागत, यानी भगवान की शरण ग्रहण करना, Surrender to the Supreme Personality of Godhead is the best interest of the living entity. सबसे बड़ा लाभ हमारा क्या है, सबसे बड़ा हमारा फायदा किसमें है कि हम भगवान की शरण ले लें, भगवान भगवत शरण भगवत कृपा प्राप्त करने के अतिरिक्त इस जीव आत्मा का और कोई लाभ हो ही नहीं सकता। लेकिन जीव आत्मा का लाभ तो है, लेकिन आगे श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही मुख्य बात बता रहे, इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है, इससे भगवान को कोई फायदा नहीं होता है कि आप भगवान की शरण में जाते हो अथवा नहीं जाते हो, भगवान को कोई फायदा नहीं होगा इससे। भगवान फिर भी कभी गुरु बनकर, कभी अवतार लेकर, कभी अपने प्रतिनिधि को भेजकर, कभी चैत्य गुरु बनकर, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से जीव को ज्ञान प्रदान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ये इतना सब हमारे लिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा फायदा है इसमें, इसमें भगवान का कोई फायदा नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है, यानी कि जब तक तुम शरणागत नहीं हो उससे पहले ही भगवान ने ज्ञान तो दे दिया ना। भले आप शरणागत ना हो लेकिन आपके पास शास्त्र तो है, शरणागत होने से पहले ही देखो, अब जो भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट करता है ना उसे भले भगवान के अंदर कोई श्रद्धा ना हो, भगवान के ऊपर कोई विश्वास ना हो, लेकिन शास्त्र तो उसे दे ही दिया ना भगवान ने, शास्त्र के अंदर पूरा का पूरा ज्ञान दे ही दिया। फिर ज्ञान देने के बाद भी भगवान ने पूरी स्वतंत्रता दी है कि आप इसको पूरी तरह से पढ़ो, इस पर विचार करो, फिर तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, है ना। तो शरणागत होने से पहले ही आप कोई मनुष्य ये सोचे कि नहीं मैं पढ़ूंगा भी नहीं, भले भगवान ने मुझे ज्ञान दे दिया है लेकिन मैं पढ़ूंगा ही नहीं, फिर तो मरेगा ना, क्योंकि जब मनुष्य का जीवन उसको मिला है तो उसको जाहिर सी बात है शास्त्र किसके लिए है, मनुष्य के लिए, उसे शास्त्रों के अनुसार। आप कोई बोलता है हमें तो पता ही नहीं होता, पता नहीं होता क्या मतलब, मनुष्य जीवन मिला है सीखो ना। अब कोई बोले कि भाई मैंने तो स्कूल कभी देखा ही नहीं है, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो फिर इसमें स्कूल की या बुक्स की तो कोई गलती नहीं है ना, उसकी गलती। उसी तरह से अगर जीव ये बोलता है कि मुझे नहीं पता शास्त्रों के अनुसार क्या सही है क्या गलत है, तो मैं तो कभी शास्त्र पढ़ता ही नहीं हूँ, अरे बाबा तुम घरे नहीं हो, कुत्ते नहीं हो, सुअर नहीं हो, मनुष्य बने हो, मनुष्य के लिए शास्त्र दिए भगवान ने, मनुष्य को खाली वही कार्य करने के लिए थोड़ी ना पैदा किया है जो कि वो जानवर करते हैं आहार निद्रा भाई मैथुन, उसको ज्ञान हासिल करना है। लेकिन जब तक ज्ञान आप पूरा का पूरा ग्रहण नहीं कर लेते हो, जब तक आप पूरी की पूरी बात समझ नहीं जाते हो, तो तब तक भगवान ने आपको पूरी स्वतंत्रता दी है कि कोई मेरा फोर्स नहीं है कि मैं तुम्हें बलात् अपनी भक्ति करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, टोटल फ्रीडम दी है, यथेच्छसी तथा करो। तुम इसको पहले विमर्श तदा शेषण, लेकिन यथेच्छसी तथा करो कहने से पहले भगवान ने ये नहीं बोला कि पढ़ो नहीं छोड़ो, ये कहा बोला कि आप छोड़ दो बस पढ़ने की जरूरत नहीं, भगवान ने कहा मैंने गुह्य से गुह्य धर्म ज्ञान बता दिया, उसको पढ़ो, उसको समझो, उसको समझने की कोशिश करो और उसको मनन करो, उसका विचार करो, समझो कि मेरे लिए क्या बेहतर है, तुम्हारा बेहतरी, तुम्हारी भलाई, तुमसे तुम्हारा सबसे बड़ा हित तो इसमें ही है कि तुम मेरी शरण में आओ, लेकिन फिर भी पहले तुम समझ लो कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। कल भी तुम मेरी शरण में आ जाओ और फिर तुम्हारा मन डाइवर्ट हो जाए कि नहीं मुझे कृष्ण की शरण में नहीं जाना चाहिए था, मुझे ना कुछ और करना चाहिए था लाइफ में, अपनी लाइफ ही मैंने टेस्टलेस बना दिए भगवान की भक्ति करके, टेस्ट सारा निकल गया, कुछ भी खाने को नहीं मिलता, कुछ भी पीने को नहीं मिलता, जिधर जाता हूँ कभी बोलते हैं ये मना है, कभी बोलते हैं वो मना है, कभी बोलते हैं ये मना। जब तक तुम अपने अंदर से बिल्कुल परफेक्टली ये ना सोच लो कृष्ण भक्ति कोले सर्व कर्म कृत हो, कि मैं भगवान की भक्ति के लिए यदि किसी चीज का त्याग कर रहा हूँ तो वो सर्वश्रेष्ठ मेरे जीवन का लाभ है, जब तक ये सोचेंगे कि ये देखो तो कृष्ण भक्ति में कैसा है, ये भी नहीं कर सकते, ये ना खा सकते हैं सुख से, ना सो सकते हैं, ना जी सकते हैं, ये तुम्हारे मन में होगा तो वो शरणागति थोड़ी होगी। देखो एक बात है, यहाँ पर भगवान ने मनन करने की बात की है, मनन का है ना, भगवान ने कहा विमिश्राय तदा शेषण, विमिश्राय तदा का क्या मतलब होता है, मनन करो यानी मन से, मैन सीज लिप्स बट गॉड सीज हार्ट, वो हृदय में बैठा है, बोले हृदय के अंदर तुम विचार करो, मुझे आकर बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे शरणागत हो गए हूँ, मुझे मैं सब समझता हूँ, तुम कितने हद तक शरणागत हो, कितने हद तक तुमने मेरा तुम्हारा सरेंडर लेवल कितना है, मुझे वो दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो संसार वाले लोग हैं ना, वो तुम्हारी बात पर यकीन कर सकते हैं, मैं तुम्हारे वर्ड्स पे, तुम्हारे शब्दों पे यकीन नहीं करता, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर देखता हूँ कि इसका हृदय कितना मेरी ओर आकर्षित है। क्या ये वाकई में हृदय से मेरी सेवा करने के लिए उद्यत है, या फिर सिर्फ दिखाना चाहता है, या सिर्फ ढोंग कर रहा है। तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, भगवान आप भी तो भगवान ने सिर्फ गुह्य गुह्य तरम कहा है। आगे तो भगवान कहते हैं सर्व गुह्य तमम, आगे भगवान बताएंगे आगे इससे ज्यादा क्या जाता है। ये तो भगवान ने अभी तक सिर्फ ये बताया कि मैंने सीक्रेट बताया, उसके बाद मोर सीक्रेट बताया। मोस्ट सीक्रेट की तो बात अभी करेंगे भगवान ने, लेकिन यहाँ पर ही कह दिया कि देखो मौत की बात नहीं चलेगी, तुम्हारे जुबान के शब्दों की बात नहीं चलेगी, हृदय के अंदर बैठा हुआ हूँ मैं परमात्मा के सूरत में। इसीलिए तुम्हें कहा है कि उस परमात्मा की तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण तो लो, हृदय से पहले अपना हृदय तो उसकी तरफ आकर्षित करो। सिर्फ मुंह से कहते रहते हैं हाँ भाई मैं भगवान की शरण में हूँ, भगवान की भक्ता करो, ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। 18वां अध्याय चल रहा है, अंतिम शिखर पे भगवान सब कुछ बता दिए, अब सिर्फ और सिर्फ अंतिम आदेश शेष रहते हैं। तो उसमें अब कोई डबल पॉलिसी नहीं रहेगी, कोई हृदय के अंदर कोई भी गंदगी नहीं चाहिए, हृदय के अंदर कोई ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ ये भी सही है ये भी। आखिरी स्टेज है श्रीमद् भगवद गीता में, भगवान कहते हैं मैंने जो सीक्रेट्स हैं, मोर सीक्रेट्स हैं, वो बता दिए हैं। तो हृदय से देखो, अपने हृदय से मनन करो, ऐसा नहीं कि तुम बस खाली बोलते रहो। तो यहाँ पर श्री रूपा जी बता रहे हैं कि इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है, तो भगवान बता रहे हैं तो भगवान का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहाँ तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करना चाहिए। मनन और मनन करने की पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता दी है भगवान ने, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यह सर्वोत्तम विधि है। क्या विधि है कि आप सुनो और उसको सोचो, समझो, समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, सोचना है। भगवान ने कहा इसको मनन करो, तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसको स्वीकार करने की सर्वोत्तम विधि ये है। अब फिर बाद में आपके मन में ये कि ये हरे कृष्णा वाले ऐसे बोलते हैं और वो लोग ऐसे बोलते हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं, पता नहीं कौन सा सत्य है। तो भगवान ने कहा कि आपको पता नहीं कौन सा सत्य है कहने की जरूरत नहीं है, आप शास्त्र खोलो, विमर्श तदस्वशरण, जो मैंने कहा है उसको गौर से सुनो और जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। ये नहीं है कि तुम किसी के कहने पर, ये भगवान ने कहा तुम मेरे कहने पर करो। क्यों? क्योंकि जितना तुम्हारा सरेंडर लेवल होगा उतना ही तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तुम जितने हिसाब से मेरी और सरेंडर करोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ बताता जाऊंगा। फिर भी जब मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे भी दूं तो भी तुम्हें जरूरत नहीं है कि बस बगैर कुछ सोचे समझे मेरी शरण में आ जाओ, उसको पूरी तरह से सोच लो। और एक दफा जब मेरी शरण में आ जाओ फिर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं हूं। बस ये तो पहले सोचने की बात है, जब एक दफा शरणागत शरण स्वीकार कर दिया उसके बाद तो आपको सिर्फ क्या करना है कि जैसा आपको करना है भगवान, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, आश्लिष्य वापादतां विनष्टु मामदर्शनम् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विद्धातुलं पटु मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। एक दफा शरण में आ जाओ फिर भगवान को बोलो, चाहे आप मुझे स्वीकार करो या अस्वीकार करो, चाहे मुझे प्रेम से घाट आलिंगन दो या पैरों से कुचल दो, ये नहीं कि तुम मुझे खुश रखोगे तो मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, ये नहीं है कि जब तुम मेरी इच्छाएं पूरी करोगे तो मैं भक्ति करूंगा। तुम चाहे दर्शन ना देखकर मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर लो, मुझे इस बात पे यकीन है कि तुम जो करोगे वही मेरे लिए हितकर है। तो ये है शरणागति की स्थिति। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय में मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। क्या विधि है कि भगवान की बात को सुनो, उसको समझो, उसके बाद शरणागत। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त हो सकता है। यानी कि अर्जुन को तो यह सौभाग्य प्राप्त था कि अर्जुन डायरेक्ट से भगवान की बात को सुनना था, भगवान की बात वचन जो है भगवान साक्षात उसको प्रेरणा दे रहे थे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम अर्जुन की स्टेज पर नहीं है, तो अर्जुन की तरह भगवान साक्षात भगवान के वचनों को नहीं समझ सकते, तो श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए उस चीज को बहुत आसान करके बता रहे हैं कि ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त हो जाए। अगर आपको कृष्ण कृपा से कोई प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु प्राप्त हो जाता है, तो आपके लिए ऐसा आदेश प्राप्त करना संभव हो जाता है। और ये भी है कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको तो फिर भी गुरु प्राप्त करने से पहले भी भगवान की शरण में जाकर ये कहना है, भाई मुझे नहीं समझ में आ रही तुम्हारी बात, मुझे कोई अच्छा शुद्ध प्रामाणिक गुरु प्रदान करो। ये भगवान की ड्यूटी है कि जैसी आपकी इच्छा है उसके अनुसार आपको वातावरण प्रदान करें। यदि आप शराबी बनना चाहते हो तो शराबियों की महफिल में भेज दिया जाएगा, यदि डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टरों के साथ, और यदि भक्त बनना चाहते हो तो ये न कहना प्रकार आपको शुद्ध भक्तों का संग मिल ही जाएगा। तो ये भगवान की ड्यूटी है, आपकी इच्छा, भगवान ने कहा यत इच्छे से तथा करूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब आप अगर भक्त बनना चाहते हो, आप प्रामाणिक गुरु का सानिध्य चाहते हो, तो ये भगवान की ड्यूटी है, आपको प्रामाणिक गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। और यही आदेश जो भगवान ने दिया है वो प्रामाणिक गुरु प्रतिनिधि स्वरूप में जो गुरु होगा वो उसके माध्यम से आपको प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर श्लोक है, आगे तो भगवान श्री कृष्ण गुह्यतम सर्व गुह्यतम बताएंगे, तो कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।